एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसके विचार आज भी दुनिया भर में बहस और आंदोलनों को कहीं ना कहीं हवा देते हैं। पॉल डियामाटो की द मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सवाद का अर्थ।
हाँ, और ये विषय ऐसा है जो आज मतलब शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखता है ना?
बिल्कुल।
हम चारों तरफ देख रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, नौकरियों की चिंता, बाजार का बार बार डामाडोल होना, समाज में तनाव।
हाँ, ये सब चीजें।
तो इन सबको समझने के लिए लोग अक्सर नए पुराने विचारों की तरफ देखते हैं और मार्क्सवाद उनमें से एक प्रमुख है। डियामाटो की किताब यही समझने की कोशिश करती है कि क्या मार्क्स के विचार आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं।
बिल्कुल। तो आज हम इसी कोशिश में लगे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम डियामाटो के नज़रिए से मार्क्सवाद की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इसे सरल सहज भाषा में समझना, जैसे डियामाटो ने अपनी किताब में कोशिश की है ना?
हाँ, कोशिश तो यही रहेगी।
सबसे पहले लेखक को जानना काफ़ी दिलचस्प है। पॉल डियामाटो कोई बंद कमरे में लिखने वाले अकादमिक विद्वान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अमेरिकी समाजवादी लेखक हैं, पत्रकार हैं और शायद उससे भी ज्यादा एक एक्टिविस्ट रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक इंटरनेशनल सोशलिस्ट रिव्यू ISR नाम की एक पत्रिका का संपादन किया।
अच्छा, ISR।
हाँ, जो समाजवादी नजरिए से दुनिया को देखती है।
और यही बात शायद उनके लेखन को खास बनाती है ना, कि उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी।
बिल्कुल, उन्होंने दशकों तक असलियत में जमीन पर समाजवादी राजनीति और मजदूरों के आंदोलनों में हिस्सा लिया है। तो उनका लिखना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो जमीनी संघर्षों और लोगों को संगठित करने के तजुर्बों से निकला है।
मतलब वो मार्क्सवाद को सिर्फ समझने की चीज नहीं मानते।
नहीं, वो उसे दुनिया को बदलने का एक औजार मानते हैं, एक जीवित चीज।
हाँ, उनका मकसद ही शायद यही रहा कि मार्क्स जैसे विचारक के जो जटिल विचार हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जैसे कामगारों, छात्रों, एक्टिविस्टों तक।
सहीगा, वो इसे सिर्फ पुराने सिद्धांतों का गट्ठर नहीं, बल्कि आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक जिंदा और जरूरी सोच मानते हैं। उनका जो अनुभव है ना, वो उन्हें सिद्धांत और जमीनी हकीकत दोनों को जोड़ने की एक अलग ही समझ देता है।
अच्छा, तो ये किताब आखिर कहती क्या है, अगर मोटे तौर पर समझे तो?
देखिए, अगर एक लाइन में कहें तो ये मार्क्स के जो असली विचार हैं उनका एक आसान परिचय है। डियामाटो की एक बड़ी कोशिश उन गलतफहमियों को दूर करना है जो मार्क्सवाद को लेकर फैली हुई हैं।
हाँ, वो तो बहुत हैं।
बहुत हैं, और ये गलतफहमियां पूंजीवाद की हिमायतियों ने भी फैलाई हैं और उन तानाशाह सरकारों ने भी, जिन्होंने मार्क्स का नाम तो लिया पर उनके विचारों का बिल्कुल गला घोंट दिया।
बिल्कुल सही कहा। और किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो शायद ये कि असली मार्क्सवाद, जैसा डियामाटो समझाते हैं, वो दिल से लोकतांत्रिक है और इंसान को आज़ाद करने वाला है।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये ऊपर से किसी नेता या पार्टी के हुक्म से आने वाला बदलाव नहीं है,
बल्कि
आम मजदूरों की अपनी पहल, अपनी ताकत से आने वाली मुक्ति पर जोर देता है। इसी को वो एक खास नाम देते हैं, नीचे से समाजवाद, सोशलिज्म फ्रॉम बिलो। ये विचार पूरी किताब में बार बार सामने आता है।
अच्छा, नीचे से समाजवाद। और डियामाटो ये भी जोर देकर कहते हैं कि मार्क्स ने पूंजीवाद का जो विश्लेषण किया था कि कैसे इसमें मुनाफा कमाने की होड़ है, मजदूरों का शोषण है और बार बार आने वाले आर्थिक संकट, वो सिस्टम में ही शामिल है।
हाँ, कि ये कोई बाहरी चीज नहीं है।
राइट। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ 19वीं सदी की बात नहीं थी।
बिल्कुल, वो तर्क देते हैं कि आज की दुनिया जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, बड़े बड़े वित्तीय संकट आते रहते हैं, पर्यावरण का बिगड़ना हम देख रहे हैं और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई,
हाँ,
इन सब चीजों को समझने के लिए भी मार्क्स का नजरिया एक जरूरी फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है।
तो संक्षेप में, किताब का लक्ष्य है मार्क्सवाद को उसके दुश्मनों से भी बचाना और उसके झूठे दोस्तों से भी।
हाँ, बिल्कुल। दुश्मन वो जो उसे बिना समझे खारिज करते हैं और झूठे दोस्त वो जिन्होंने उसके नाम पर तानाशाही चलाई। दोनों से बचाना है। ये मार्क्सवाद को कोई पत्थर की लकीर या धार्मिक किताब नहीं मानती,
बल्कि
समाज की सच्चाई को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक लगातार विकसित होने वाला एक क्रिटिकल आलोचनात्मक तरीका बताती है।
अच्छा, तो ये तो हुई किताब की मोटी मोटी बात। अब जरा अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि डियामाटो अपने तर्कों को कैसे परत दर परत खोलते हैं। वो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी चीजों से करते हैं, है ना?
हाँ, पहले हिस्से में वो मार्क्सवादी सोच की नींव रखते हैं
और शुरुआत होती है ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से।
ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है।
हाँ, लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी समाज का आधार उसकी भौतिक चीजें होती हैं, यानी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है।
अच्छा,
डियमाटो कहते हैं कि यही नींव तय करती है कि उस समाज की सोच कैसी होगी, राजनीति, कानून, संस्कृति कैसी होगी। इतिहास जो है वो बड़े बड़े नेताओं या सिर्फ विचारों से नहीं बदलता,
बल्कि
जमीन पर लोगों की जिंदगी की सच्चाई और अलग अलग वर्गों के बीच चलने वाले संघर्ष से बदलता है। आप क्या और कैसे बनाते हैं वही तय करता है कि आपका समाज कैसा दिखेगा मोटे तौर पर।
और इसी से जुड़ा है द्वंद्वात्मक सोच, डायलेक्टिकल थिंकिंग का आइडिया।
हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि दुनिया कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, हर चीज में, हर सिस्टम में अंदरूनी टकराव होते हैं, विरोधाभास होते हैं,
कॉन्ट्रडिक्शंस।
हाँ, कॉन्ट्रडिक्शंस, और इन्हीं टकरावों से बदलाव आता है। पूंजीवाद में भी ऐसे टकराव हैं जो उसे अस्थिर बनाते हैं और बदलाव की जमीन तैयार करते हैं।
और यहीं पर मार्क्स की वो मशहूर लाइन आती है जिसे डियमाटो बहुत अहमियत देते हैं।
हाँ, कि दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की सिर्फ अलग अलग तरह से व्याख्या की है, असली सवाल तो इसे बदलना है। ये लाइन मार्क्सवाद के असली मकसद पर जोर देती है। ये सिर्फ दुनिया को समझने का चश्मा नहीं है, बल्कि उसे बदलने का हथियार भी है। ज्ञान का असली मकसद कर्म होना चाहिए, बदलाव लाना होना चाहिए।
अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया को समझने की एक बुनियादी सोच। लेकिन डियमाटो फिर बताते हैं कि इसी सोच से पूंजीवाद के बड़े खंभे, यानी क्लास या वर्ग, मुनाफे का खेल जिसे शोषण कहते हैं, और सरकार या राज्य का असली रोल कैसे समझे जा सकते हैं, वो वर्ग क्लास की बात करते हैं।
हाँ, और मार्क्स के लिए वर्ग आपकी कमाई या लाइफस्टाइल से तय नहीं होता।
तो फिर किससे?
इससे तय होता है कि फैक्ट्रियों, जंगीनों, मशीनों जैसी चीजों पर, जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं, उन पर किसका कंट्रोल है। पूंजीपति वर्ग इनका मालिक है, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग है जिसके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा, अपना श्रम बेचने के सिवा कुछ नहीं है।
और यहीं पे डियमाटो वो राज खोलते हैं जिस पर पूरा पूंजीवाद टिका है, अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू। ये भी थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ, पर मतलब सीधा है। आप दिन भर काम करके जितनी कीमत पैदा करते हैं, आपको पगार या वेतन उससे कम मिलता है।
अच्छा,
ये जो बीच का फर्क है, जो आपकी अतिरिक्त मेहनत है जिसके पैसे आपको नहीं मिले, वही मालिक का मुनाफा बनता है। ये वो छिपा हुआ सच है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है।
और डियमाटो कहते हैं कि ये सिर्फ पुरानी फैक्ट्रियों की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की जो गिग इकोनॉमी है, डिलीवरी जॉब्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वहां भी ये उतना ही सच है। तरीका बदल गया है, पर मूल बात वही है।
और फिर आता है राज्य, स्टेट का सवाल, यानी सरकार, पुलिस, अदालतें, सेना। मार्क्सवादी नजरिए से, जिसे डियमाटो समझाते हैं, राज्य कोई सबके लिए बराबर काम करने वाली निष्पक्ष संस्था नहीं है।
नहीं है, उसका मुख्य काम होता है मालिक वर्ग यानी पूंजीपतियों के हितों और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना। हाँ, कभी कभी जनता के दबाव में वो कुछ सहूलियतें दे सकता है, कुछ अच्छे कानून बना सकता है,
लेकिन असल झुकाव
हमेशा मालिक वर्ग की तरफ ही रहता है।
इसके बाद डियमाटो पूंजीवाद की अंदरूनी चाल और उसके अपने विरोधाभासों पर आते हैं। एक बहुत अहम विचार है अलगाव, एलियनेशन का। ये क्या है?
ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पूंजीवाद कैसे काम करने वाले इंसान को उसके काम से ही बेगाना कर देता है। आप कोई चीज बनाते हैं, लेकिन उससे आपका कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, वो बस बिकने के लिए है। काम सिर्फ पेट भरने का जरिया बन जाता है, अपनी कला या हुनर दिखाने का मौका नहीं रहता। आप अपने साथी कर्मचारियों से भी एक तरह की होड़ की वजह से कट जाते हैं, और अंत में आप अपनी पूरी इंसानी क्षमता से ही अलग थलग महसूस करने लगते हैं।
ये बात तो शायद बहुत से लोग महसूस करते होंगे अपनी नौकरियों में, वो खालीपन।
बिल्कुल, डियमाटो कहते हैं कि आज की बहुत सी नौकरियों में जो खालीपन या मतलबहीनता महसूस होती है, वो इसी अलगाव का नतीजा है।
और इससे जुड़ा एक और आइडिया है, कमोडिटी फेटिशिज्म। ये थोड़ा और पेचीदा लगता है।
हाँ, थोड़ा सा, पर सोचिए, हम बाजार में चीजों की कीमतें देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, एड देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन चीजों को बनाने में कितनी इंसानी मेहनत लगी है, किन हालातों में वो बनी है।
हाँ, ये तो सच है।
से था और हमेशा रहेगा, जैसे ये कोई कुदरती नियम हो, जबकि असल में ये इतिहास में बना एक खास सिस्टम है जो बदल भी सकता है।
और डियमाटो बताते हैं कि इस सिस्टम में अस्थिरता और संकट, इंस्टेबिलिटी एंड क्राइसिस, अंदर से ही आते हैं। ये कोई बाहर से आई मुसीबत नहीं है।
बिल्कुल नहीं। जैसे मुनाफे की दर कम होने का खतरा हमेशा बना रहता है, या फिर अर्थव्यवस्था का कभी तेजी से ऊपर जाना और फिर धड़ाम से नीचे गिरना, जिसे बूम बस्ट साइकिल कहते हैं।
हाँ, वो उतार चढ़ाव।
हाँ, डीएम ऑटो 2008 के बड़े आर्थिक संकट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये पूंजीवाद की अपनी अंदरूनी बीमारी के लक्षण हैं, कोई बाहरी हादसा नहीं, ये सिस्टम में ही लिखा है।
और आखिर में साम्राज्यवाद।
हाँ, पूंजीवाद को जिंदा रहने और फैलने के लिए लगातार नए बाजारों की जरूरत होती है, सस्ती लेबर की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है,
तो वो अपनी सीमाओं से बाहर फैलता है।
बिल्कुल, इसलिए वो अपनी सरहदों से बाहर फैलता है और फिर देशों और बड़ी कंपनियों के बीच यही होड़ साम्राज्यवाद को जन्म देती है, दूसरे देशों पर कब्जा करने की कोशिशें होती हैं और युद्धों को जन्म देती है।
और यहीं पर मार्क्स का वो नारा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और भी ज्यादा मायने रखता है।
हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि मजदूरों के असली हित किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मजदूरों के हित एक जैसे हैं, उनका दुश्मन एक है।
किताब का एक बड़ा हिस्सा इतिहास पर भी नजर डालता है, खासतौर पर 20वीं सदी के अनुभवों पर। डीएम ऑटो रूसी क्रांति 1917 को बहुत अहम मानते हैं।
हाँ, वो उसे इतिहास में नीचे से समाजवाद की सबसे बड़ी मिसाल बताते हैं, जहां लाखों मजदूरों और किसानों ने जार के राज को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की लोकतांत्रिक सभाओं, जिन्हें सोवियत कहते थे, उनके जरिए सीधे सत्ता अपने हाथ में ले ली।
ये ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं था।
नहीं, ये जनता का अपना एक्शन था, उनकी अपनी पहल थी।
लेकिन फिर जो हुआ वो कहानी का सबसे मुश्किल और शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है, स्टालिनवाद का उदय। और यहाँ डीएम ऑटो बहुत साफ और तीखी लाइन खींचते हैं ना।
हाँ, बहुत साफ। वो जोर देकर कहते हैं कि स्टालिन के राज में जो भयानक तानाशाही आई, वो मार्क्सवाद या लेनिन की सोच का नतीजा नहीं थी, बल्कि वो उस क्रांति के खिलाफ एक क्रूर काउंटर रेवोल्यूशन या प्रतिक्रांति थी।
ये एक बहुत बड़ा दावा है। वो इसे समझाते कैसे हैं, ऐसा क्यों हुआ?
डीएम ऑटो इसके कई कारण बताते हैं। देखिए, रूस में क्रांति के बाद भयानक गृह युद्ध हुआ, जिसमें लाखों सबसे जागरूक और अनुभवी क्रांतिकारी मारे गए, देश तबाह हो गया था। फिर दूसरे देशों में, खासकर जर्मनी में, जैसी उम्मीद थी वैसी क्रांतियां नहीं हुई, तो रूस दुनिया में अकेला पड़ गया,
बिल्कुल अलग थलग।
हाँ, और देश बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब था। इन सब मुश्किल हालातों ने धीरे धीरे सरकारी अफसरों की एक नई परत, एक ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर बना दिया।
अच्छा,
इस नौकरशाही ने मजदूरों के जो लोकतांत्रिक अधिकार थे, जो सोवियतें थीं, उन्हें कुचल दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। डीएम ऑटो का तर्क है कि स्टालिन का सोवियत संघ असली समाजवाद था ही नहीं।
तो फिर क्या था?
वो एक तरह का राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म बन गया था, जहां सरकार खुद एक बड़े पूंजीपति की तरह बर्ताव करती थी, मजदूरों का शोषण करती थी और पश्चिमी देशों से हथियारों की होड़ में लगी थी।
इसीलिए डीएम ऑटो कहते हैं कि स्टालिनवाद और मार्क्सवाद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं।
हाँ, बिल्कुल, वो एक चीज है ही नहीं, ये इतिहास की एक बहुत अलग व्याख्या है जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती।
सही कहा। अब किताब आज के मुद्दों पर आती है। एक आम आलोचना होती है कि मार्क्सवाद सिर्फ वर्ग की बात करता है और नस्ल, जाति, लिंग जैसे उत्पीड़नों को नजरअंदाज कर देता है। डीएम ऑटो इसका क्या जवाब देते हैं?
डीएम ऑटो कहते हैं कि ये आलोचना गलत है। हाँ, ये सच है कि जातिवाद, लिंग भेद जैसे उत्पीड़न पूंजीवाद से भी पुराने हैं, वो पहले से मौजूद थे।
हाँ,
लेकिन पूंजीवाद इन्हें खत्म नहीं करता, बल्कि वो इन्हें नया रूप देता है और मजदूर वर्ग को आपस में बांटने के लिए इनका इस्तेमाल करता है।
कैसे? कोई उदाहरण?
जरा सोचिए, कैसे प्रवासी मजदूरों का ज्यादा शोषण होता है, या कैसे अलग अलग समुदायों या लिंगों के लोगों को कम या ज्यादा पगार देकर उनमें फूट डाली जाती है, कॉम्पिटिशन पैदा किया जाता है।
हाँ, ये तो होता है।
इसलिए डीएम ऑटो के अनुसार इन उत्पीड़नों के खिलाफ लड़ाई मजदूर वर्ग की अपनी मुक्ति की लड़ाई का ही एक जरूरी हिस्सा है। मजदूर आंदोलन तभी मजबूत हो सकता है जब वो अपने सबसे दबे कुचले तबकों की आवाज को सबसे आगे रखे, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझे।
किताब कुछ और आम सवालों के भी जवाब देती है ना, जैसे क्या इंसान स्वभाव से ही लालची होता है? ये तो बहुत सुनने को मिलता है।
हाँ, बहुत। डीएम ऑटो कहते हैं कि इंसानी स्वभाव कोई पत्थर की लकीर नहीं है, समाज जैसा होता है वैसा ही स्वभाव बनता बिगड़ता है। पूंजीवाद लालच और कंपटीशन को बढ़ावा देता है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा से ऐसा था या हमेशा ऐसा ही रहेगा। माहौल बदलेगा तो स्वभाव भी बदल सकता है।
और ये सवाल कि क्या समाजवाद सिर्फ एक सपना, एक यूटोपिया है?
डीएम ऑटो का जवाब है नहीं, ये पूंजीवाद के अपने अंदरूनी विरोधाभासों से पैदा हुई एक असली संभावना है। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। हाँ, इसके लिए लड़ना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आ जाता।
और आखिरी सवाल, क्या समाजवाद फेल हो गया? दुनिया ने देखा है, सोवियत यूनियन का क्या हुआ?
डियामाटो फिर जोर देते हैं कि जो फेल हुआ वो स्टालिन वाला तानाशाही मॉडल था। वो असली लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं था, जिसे वो नीचे से समाजवाद कहते हैं, और उसे हासिल करना अभी बाकी है। वो कहते हैं कि असली समाजवाद को तो अभी तक मौका ही नहीं मिला ठीक से।
अच्छा, तो इस पूरी बातचीत से, डियामाटो की किताब से कुछ मोटी मोटी बातें या संदेश क्या निकलते हैं? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो?
मुझे लगता है कुछ चीज़ें बार बार सामने आती हैं। सबसे पहले तो वही नीचे से समाजवाद बनाम ऊपर से समाजवाद वाली बात। असली बदलाव आम लोगों की अपनी कोशिशों से, उनके अपने संगठनों से, उनके मिलकर लड़ने से ही आएगा। कोई नेता या पार्टी ऊपर से ये तोहफा नहीं दे सकती। ये शायद सबसे अहम संदेश है।
हाँ, ये बात बहुत जोर देकर कही गई है। दूसरा, मार्क्सवाद कोई बंद पोथी या हठधर्मिता नहीं, बल्कि एक जिंदा सोच है।
बिल्कुल, डियामाटो इसे बार बार कहते हैं। ये दुनिया को समझने और बदलने का एक औजार है, जिसे लगातार नई परिस्थितियों में लागू करना पड़ता है, उसे विकसित करना पड़ता है। ये कोई 125 साल पहले लिखी गई पत्थर की लकीर नहीं है।
तीसरा, श्रमिक वर्ग की केंद्रीय भूमिका।
हाँ, इसलिए नहीं कि वो नैतिक रूप से ज्यादा अच्छे हैं या कुछ और, बल्कि इसलिए कि समाज का सारा धन वही पैदा करते हैं और उनके बिना सिस्टम चल नहीं सकता। इसी वजह से उनके पास व्यवस्था को बदलने की एक खास ताकत और साझा हित हैं।
चौथा, पूंजीवाद में संकट का आना तय है। आर्थिक मंदी, युद्ध, पर्यावरण का विनाश, ये सब सिर्फ बुरी नीतियां या कुछ बुरे लोगों का नतीजा नहीं है।
नहीं, डियामाटो के अनुसार ये पूंजीवाद के अपने अंदरूनी तर्क और अंतर्विरोधों से ही पैदा होते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा हैं।
और पांचवा, शोषण और हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का गहरा रिश्ता।
हाँ, कि मजदूरों की मुक्ति और जाति, नस्ल, लिंग आदि पर आधारित सभी तरह के उत्पीड़नों से मुक्ति, ये एक ही लड़ाई के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
भारत जैसे देश में जहाँ जाति और वर्ग इतने गुंथे हुए हैं, ये बात शायद और भी ज्यादा मायने रखती है ना?
बिल्कुल, यहाँ तो ऐसे अलग करके देख ही नहीं सकते। ये मुद्दे हमें अपने आसपास की दुनिया, चाहे वो भारत हो या कहीं और, उसे देखने का एक अलग नजरिया देते हैं। हम शायद रोजमर्रा के संघर्षों, बढ़ती महंगाई या समाज को बांटने वाली ताकतों की जड़ों को बेहतर समझ पाएं, सिर्फ ऊपरी लक्षणों में न उलझे रहें।
किताब में कई ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं। डियामाटो कुछ मशहूर कथनों का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ पे बात करते हैं।
हाँ, जैसे वो पहली वाली बात, दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, मुद्दा इसे बदलना है। ये बार बार याद दिलाता है कि मार्क्सवाद सिर्फ सोचने विचारने का खेल नहीं है, इसका असली मकसद दुनिया में बदलाव लाना है। ज्ञान का अंत एक्शन में होना चाहिए।
और वो मशहूर नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मजदूरों के साझे हितों की तरफ इशारा करता है, जो देशों की सीमाओं से परे हैं, और ये भी कि इस सिस्टम में उनके पास असल में खोने को है ही क्या, सिवाय अपने शोषण के, अपनी बेड़ियों के।
एक और गहरा विचार है, पूंजी कोई चीज नहीं बल्कि इंसानों के बीच का एक सामाजिक रिश्ता है। इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब पैसा, मशीन, फैक्ट्री अपने आप में पूंजी नहीं है। पूंजी वो पूरा सिस्टम है, वो सामाजिक संबंध है जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। ये हमें सतह के नीचे छिपे असली सत्ता के रिश्तों को देखने को कहता है। चीजों के पीछे के इंसानी रिश्तों को देखो।
और ये वाला तो नीचे से समाजवाद का निचोड़ लगता है। श्रमिक वर्ग की मुक्ति स्वयं श्रमिक वर्ग का ही काम होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, यानी कोई मसीहा आकर उन्हें आजाद नहीं कराएगा, उन्हें खुद ही संगठित होना होगा, खुद ही लड़ना होगा अपनी बेहतरी के लिए। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है।
और आखिर में डियामाटो का वो तीखा बयान, स्टालिनवाद और मार्क्सवाद जानी दुश्मन है।
हाँ, ये शायद सबसे जरूरी बातों में से एक है आज के दौर में, क्योंकि ये मार्क्सवाद को उन भयानक अपराधों से अलग करता है जो उसके नाम पर किए गए। ये इतिहास को समझने का एक बहुत अहम नजरिया है, ताकि वो गलतियां दोबारा ना हों।
तो ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी और बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हम इन्हें अपनी लाइफ में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? आम इंसान कैसे देखे इसे?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई एक्टिविस्ट बन जाए या झंडा उठा ले, लेकिन ये सोच हमें अपने आसपास की चीजों को अलग तरह से देखने में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर अपने काम की जगह को समझना।
कैसे?
अगर काम पर तनाव है, सैलरी कम लगती है या नौकरी में मन नहीं लगता, असुरक्षा महसूस होती है, तो इससे सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या अपनी कमी ना मानकर ये सोचना कि कहीं ये उस बड़े सिस्टम का हिस्सा तो नहीं जहां मुनाफा मजदूर की भलाई से ज्यादा जरूरी है। ये सोच शायद हमें अपने हक के लिए मिलकर आवाज उठाने की जरूरत समझाए या कम से कम अपने साथियों के साथ बात करने की हिम्मत दे।
हाँ, ये एक अलग नजरिया है। या फिर जब हम आर्थिक खबरें पढ़ते हैं, मंदी आ गई, महंगाई बढ़ गई।
हाँ, तो सिर्फ सरकार को कोसने के बजाय या किसी एक मंत्री को दोष देने के बजाय ये सोचना कि क्या ये पूंजीवादी सिस्टम की अपनी फितरत का नतीजा है? क्या मुनाफे पर टिका सिस्टम हमेशा स्थिर रह सकता है? शायद नहीं।
और राजनीति को समझना, क्यों अक्सर चुनाव आते जाते हैं पर आम लोगों की बुनियादी समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं।
बिल्कुल, ये सोच हमें शायद चुनावी राजनीति की सीमाओं को समझने में मदद करे और ये समझाए कि जमीनी आंदोलनों की अहमियत क्यों है, जो सिर्फ वोट डालने से आगे बढ़कर बदलाव के लिए लगातार दबाव बनाते हैं।
और बड़े वैश्विक मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज या दुनिया भर में बढ़ती असमानता।
हाँ, क्या हम इन्हें सिर्फ अलग अलग देशों की नीतियों की नाकामी के तौर पर देखें या इसे पूंजीवाद की उस अंतहीन दौड़ से जोड़कर देखें जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा ही सब कुछ है, चाहे पर्यावरण तबाह हो जाए या करोड़ों लोग गरीबी में रहें।
और शायद सबसे जरूरी चीज, हमारे दिमाग में बैठी हुई सोच पर सवाल उठाना।
हाँ, ये सबसे मुश्किल है। जैसे ये मानना कि मेहनत करोगे तो सफल होगे ही, या बाजार में कॉम्पिटिशन होना तो अच्छी बात है, या थोड़ा बहुत लालच तो सब में होता है, ये तो ह्यूमन नेचर है। मार्क्सवादी नजरिया हमें रुक कर ये पूछने को कहता है कि ये आम लगने वाली बातें कहीं किसी खास वर्ग के फायदे के लिए तो नहीं बनी, कहीं ये हमें सिस्टम पर सवाल उठाने से तो नहीं रोक रही।
ये हमें दुनिया को सिर्फ देखने नहीं बल्कि उसे बदलने की संभावना पर सोचने के लिए उकसाता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो डियामाटो की किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि उनके मुताबिक मार्क्स का विश्लेषण आज भी उतना ही ताकतवर और जरूरी है। हमारी आज की उलझी हुई दुनिया जिसमें इतनी असमानता है, इतने संकट हैं, इतने झगड़े हैं, उसे समझने के लिए ये एक अहम औजार बना हुआ है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली थी वो डियामाटो का नीचे से समाजवाद और स्टालिनवाद के बीच वो बेहद साफ फर्क करना था। ये 20वीं सदी के इतिहास की कैसी कहानी कहता है जो आम तौर पर छिपी रह जाती है या जानबूझकर छिपाई जाती है, जहां अक्सर दोनों को एक ही मान लिया जाता है।
हाँ, ये बहुत स्पष्ट किया उन्होंने।
और साथ ही ये विचार के सिद्धांत का असली मकसद दुनिया को बदलना है, न कि सिर्फ उसकी व्याख्या करना, ये बहुत उम्मीद जगाता है। ये मार्क्सवाद को एक ठहरी हुई चीज नहीं बल्कि एक चलते हुए जिंदा प्रोजेक्ट की तरह दिखाता है।
बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। क्या डियामाटो का ये नजरिया अपनी पूरी जटिलता और इतिहास के सबक के साथ आज की जो बिल्कुल नई चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे कि गहराता हुआ जलवायु संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आए जैसी टेक्नोलॉजी से पैदा होती नई तरह की असमानता, या दुनिया भर में उठ रहे नए किस्म के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, क्या इन सबको समझने और इनसे निपटने में मार्क्सवाद वाकई हमारी मदद कर सकता है?
ये एक बड़ा सवाल है।
हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।